एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195729572।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
यीशु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद यीशु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद यीशु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद यीशु धन्यवाद तेरा। तेरे नाम की महिमा मुझसे हो सदा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद यीशु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद यीशु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा। यीशु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद यीशु धन्यवाद तेरा, तेरे नाम की महिमा मुझसे हो सदा, तेरे नाम की महिमा मुझसे हो सदा, धन्यवाद यीशु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद यीशु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद तेरा, तेरे नाम की महिमा मुझसे हो सदा, तेरे नाम की महिमा मुझसे हो सदा, धन्यवाद यीशु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद यीशु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को और हृदयों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। विशेषकर मैं श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें तेरे वचन को सुनने और समझने और तेरे रास्ता में चलने के लिए मदद कर, और मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का आशीष दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ्य के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है क्षमा का माप। पत्रस मसीह के पास यह प्रश्न लेकर आया था, मेरा भाई मेरे विरुद्ध कितनी बार पाप करेगा और मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार तक? रबियों ने क्षमा करने के अभ्यास को 3 अपराधों तक सीमित कर दिया। पत्रस ने, जैसा कि उसने माना, मसीह की शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए इसे 7 तक बढ़ाने का विचार किया, जो संख्या पूर्णता को दर्शाती है। लेकिन मसीह ने सिखाया कि हमें कभी भी क्षमा करने से थकना नहीं चाहिए। 7 बार तक नहीं, उन्होंने कहा, बल्कि 70 बार 7 बार तक। फिर उन्होंने दिखाया कि किस आधार पर क्षमा प्रदान की जानी चाहिए और क्षमा ना करने की भावना को पोषित करने का क्या खतरा है। एक दृष्टांत में जो हम पाते हैं मत्ती 18 का 21 से 35 में, उन्होंने एक राजा के उन अधिकारियों के साथ व्यवहार के बारे में बताया जो उसकी सरकार के मामलों का प्रबंधन करते थे। इनमें से कुछ अधिकारी राज्य से संबंधित बहुत बड़ी रकम प्राप्त करते थे। जब राजा ने इस ट्रस्ट के प्रशासन की जांच की तो उसके सामने एक व्यक्ति को लाया गया जिसके खाते में 10,000 प्रतिभाओं की भारी राशि का कर्ज अपने स्वामी के प्रति दिखाया गया। राजा को चुकाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था और प्रथा के अनुसार राजा ने उसे उसके पास जो कुछ भी था उसके साथ बेच देने का आदेश दिया ताकि भुगतान किया जा सके। लेकिन भयभीत आदमी उसके पैरों पर गिर गया और उससे विनती करते हुए कहा, मेरे साथ धीरज रखिए और मैं तुम्हारा सब कुछ चुका दूंगा। तब उस दास के स्वामी को दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। लेकिन वह दास बाहर गया और अपने संगी दासों में से एक को पाया जो उस पर 100 दिनार का कर्जदार था और उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोटकर कहा, जो तूने मुझ पर कर्जा किया है उसे चुका दे। और उसका संगी दास उसके पैरों पर गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा, धीरज रख, मैं तेरा सब कुछ चुका दूंगा। पर उसने ऐसा नहीं किया बल्कि जाकर उसे जेल में डाल दिया जब तक कि वह कर्जा ना चुका दे। इसलिए जब उसके संगी दासों ने यह देखा तो वे बहुत दुखी हुए और जाकर अपने स्वामी को सब कुछ बताया। तब उसके स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की सो मैंने तेरा सब कर्जा माफ कर दिया। क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी जैसा कि मैंने तुझ पर दया की? और उसका स्वामी क्रोधित हुआ और उसे यातना देने वालों के हवाले कर दिया जब तक कि वह अपना सब कुछ चुका ना दे। इस राजा द्वारा दी गई क्षमा सभी पापों की दिव्य क्षमा को दर्शाती है। मसीह का प्रतिनिधित्व राजा द्वारा किया जाता है जिसने करुणा से प्रेरित होकर अपने सेवक का ऋण माफ कर दिया। मनुष्य टूटे हुए कानून की निंदा के अधीन था, वह खुद को बचा नहीं सकता था और इसी कारण से मसीह इस दुनिया में आया, अपनी दिव्यता को मानवता के साथ पहनाया और अपना जीवन दिया अन्यायी के लिए न्यायी। उसने खुद को दे दिया हमारे पापों के लिए और हर आत्मा को वह रक्त से खरीदी गई क्षमा प्रदान करता है। प्रभु के पास दया है और उसके पास भरपूर छुटकारा है। भजन संहिता 130 का 7 कहता है, यही वह आधार है जिस पर हमें अपने साथी पापियों के प्रति करुणा दिखानी चाहिए। यदि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। लिखा है 1 यूहन्ना 4:11 में, मसीह कहते हैं, तुम्हें मुफ्त मिला है, मुफ्त दो। मत्ती 10:8। दृष्टांत में जब कर्जदार ने देरी के लिए विनती की इस वादे के साथ कि मेरे साथ धीरज रखो और मैं तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा, तो सजा रद्द कर दी गई, पूरा कर्ज माफ कर दिया गया और उसे जल्द ही उस मालिक के उदाहरण का पालन करने का अवसर दिया गया जिसने उसे माफ कर दिया था। बाहर निकलते हुए वह एक साथी नौकर से मिला जिस पर उसका एक छोटा सा पैसा बकाया था। उसे 10,000 प्रतिभाएं माफ कर दी गई थी। कर्जदार पर उसका 100 पैसे बकाया थे, लेकिन जिस पर इतनी दया की गई थी उसने अपने साथी मजदूर के साथ बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार किया। उसके कर्जदार ने वैसे ही अपील की जैसी उसने खुद राजा से की थी, लेकिन वैसा नतीजा नहीं निकला। जिसे हाल ही में माफ किया गया था वह दयालु नहीं था। उस पर दिखाई गई दया उसने अपने साथी नौकर के साथ व्यवहार करते समय नहीं दिखाई। उसने धैर्य रखने के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। उस पर बकाया छोटी सी रकम ही वह सब थी जिसे कीर्तिघन नौकर ने ध्यान में रखा। उसने वह सब मांगा जो उसे मिलना चाहिए था और उसी तरह की सजा को लागू किया जो उसके लिए इतनी कृपा पूर्वक रद्द कर दी गई थी। आज कितने लोग उसी भावना को प्रकट कर रहे हैं जब कर्जदार ने अपने स्वामी से दया की याचना की तो उसे अपने कर्ज की महानता का सही एहसास नहीं था, उसे अपनी बेवसी का एहसास नहीं था। उसे उम्मीद थी कि वह खुद को छुड़ा लेगा। उसने कहा, मेरे साथ धैर्य रखो और मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। इसलिए ऐसे कई लोग हैं जो अपने कामों से ईश्वर की कृपा पाने की उम्मीद करते हैं। उन्हें अपनी बेबसी का एहसास नहीं है। वे परमेश्वर के अनुग्रह को मुफ्त उपहार के रूप में स्वीकार नहीं करते, बल्कि अपने आप को आत्मधार्मिकता में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अपने दिल पाप के कारण टूटे और नम्र नहीं हैं, और वे दूसरों के प्रति कठोर और क्षमाशील हैं। उनके परमेश्वर के विरोध उनके अपने पाप उनके भाई के उनके विरोध पापों की तुलना में 100 दिनार में 10,000 तोड़े के बराबर है, लगभग 1 में 10 लाख। फिर भी वे क्षमा न करने का साहस करते हैं। दृष्टांत में प्रभु ने निर्दयी कर्जदार को बुलाया और उसे कहा, हे दुष्ट दास, मैंने तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया क्योंकि तूने मुझसे प्रार्थना की थी। क्या तुझे भी अपने साथी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी जैसा मैंने तुझ पर दया की थी? और उसके स्वामी ने क्रोधित होकर उसे यातना देने वालों के हवाले कर दिया जब तक कि वह अपना सारा बकाया ना चुका दे। यीशु ने कहा, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई के अपराध हृदय से क्षमा ना करे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। जो क्षमा करने से इनकार करता है वह इस प्रकार क्षमा की अपनी आशा को त्याग देता है। लेकिन इस दृष्टांत की शिक्षा को गलत तरीके से लागू नहीं किया जाना चाहिए। हमारे प्रति परमेश्वर की क्षमा किसी भी तरह से उनकी आज्ञा मानने के हमारे कर्तव्य को कम नहीं करती है। इसलिए अपने साथियों के प्रति क्षमा की भावना न्यायोचित दायित्व के दावे को कम नहीं करती है। मसीह ने अपने शिष्यों को जो प्रार्थना सिखाई थी उसमें उन्होंने कहा, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। मत्ती 6:12 में हम पाते हैं, इससे उनका मतलब यह नहीं था कि हमारे पापों की क्षमा पाने के लिए हमें अपने अपराधियों से न्यायोचित बकाया नहीं मांगना चाहिए। यदि वे भुगतान नहीं कर सकते हैं, भले ही यह अनुचित प्रबंधन का परिणाम हो, तो उन्हें जेल में नहीं डाला जाना चाहिए, उन पर अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए या उनके साथ कठोर व्यवहार भी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दृष्टांत हमें आलस्य को प्रोत्साहित करना नहीं सिखाता है। परमेश्वर का वचन घोषणा करता है कि यदि कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा तो वह ना खाएगा, 2 थिस्सलुनीकियों 3:10। प्रभु को यह अपेक्षा नहीं है कि मेहनत करने वाला व्यक्ति दूसरों को आलस्य में सहारा दे। बहुतों के साथ समय की बर्बादी होती है, प्रयास की कमी होती है जो गरीबी और अभाव लाती है। अगर इन गलतियों को सुधारने वाले लोग इन्हें नहीं सुधारते तो उनके लिए जो भी किया जा सकता है वह छेद वाली थैली में खजाना डालने जैसा होगा। फिर भी गरीबी अपरिहार्य है और हमें उन लोगों के प्रति कोमलता और करुणा दिखानी चाहिए जो दुर्भाग्यशाली हैं। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम स्वयं समान परिस्थितियों में चाहते हैं कि हमारे साथ किया जाए। मसीह ने कहा, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे बता। यदि वह तेरी सुन ले तो तूने अपने भाई को पा लिया, परंतु यदि वह तेरी ना सुने तो अपने साथ एक या दो जनों को ले जा कि हर बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से पुष्ट हो जाए, और यदि वह उनकी ना सुने तो कलीसिया को बता। परंतु यदि वह कलीसिया की ना सुने तो वह तेरे लिए अन्य जाति और चुंगी लेने वाले के समान ठहरे, कहता है मत्ती 18:15-17 में। यहाँ पर यीशु मसीह बतला रहे हैं किस तरह से हमें लोगों से व्यवहार करना है और उन्हें सुधारने का काम करना है। पहले हम उनके साथ एक से एक बात करें, यदि ना हो तो समाज में ले जाए, कलीसिया में ले जाए कि वह सुधार में आ जाए। हमारे प्रभु सिखाते हैं कि मसीहों के बीच की मुश्किलों को चर्च के भीतर ही सुलझाया जाना चाहिए। जो लोग परमेश्वर से नहीं डरते उनके सामने नहीं खोला जाना चाहिए। यदि किसी मसीह के साथ उसके भाई ने अन्याय किया है तो उसे न्यायालय में अविश्वासियों के सामने अपील नहीं करनी चाहिए। उसे मसीह द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। खुद का बदला लेने की कोशिश करने के बजाय उसे अपने भाई को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। परमेश्वर उन लोगों के हितों की रक्षा करेगा जो उसे प्यार करते हैं और उसका भय मानते हैं, और हम विश्वास के साथ अपना मामला उसके हाथों में सौंप सकते हैं जो न्यायपूर्ण तरीके से न्याय करता है। हम पढ़ते हैं लूका 17 का 3 और 4 में, और यदि वह दिन में 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आए और कहे मैं पश्चाताप करता हूँ तो तू उसे क्षमा कर, यह यीशु का कहा हुआ बात है। और केवल 7 बार ही नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार, जितनी बार परमेश्वर आपको क्षमा करता है। हम स्वयं परमेश्वर के मुफ्त अनुग्रह के लिए सब कुछ के ऋणी हैं। वाचा में अनुग्रह ने हमें गोद लेने का आदेश दिया। उद्धारकर्ता में अनुग्रह ने हमारे उद्धार, हमारे पुनर्जन्म और मसीह के साथ उत्तराधिकार के लिए हमारे उत्थान को प्रभावित किया। इस अनुग्रह को दूसरों पर प्रकट होने दें। गलती करने वाले को हतोत्साहित होने का कोई अवसर ना दें। अपने भाई को चोट पहुंचाने के लिए फरीसी कठोरता को अंतर आने ना दे। मन या हृदय में कोई कड़वाहट ना आने दे। वाणी में तिरस्कार का कोई भाव प्रकट ना होने दे। यदि आप अपनी बात कहते हैं, यदि आप उदासीनता का रवैया अपनाते हैं या संदेश या अविश्वास दिखाते हैं तो यह एक आत्मा का नाश साबित हो सकता है। उसे अपने मानवता के हृदय को छूने के लिए बड़े भाई के सहानुभूतिपूर्ण हृदय वाले भाई की आवश्यकता है। उसे सहानुभूतिपूर्ण हाथ की मजबूत पकड़ महसूस करने दे और फुसफुसाहट सुने। आओ प्रार्थना करें। ईश्वर आप दोनों को एक स्मृद अनुभव देगा। प्रार्थना हमें एक दूसरे के साथ और ईश्वर के साथ जोड़ती है। प्रार्थना यीशु को हमारे पास लाती है और दुनिया, शरीर और शैतान पर विजय पाने के लिए बेहोश परेशान आत्मा को नई ताकत देती है। प्रार्थना शैतान के हमलों को दूर करती है। जब कोई व्यक्ति मानवीय खामियों से दूर होकर यीशु को देखता है तो उसके चरित्र में एक दिव्य परिवर्तन होता है। मसीह की आत्मा हृदय पर काम करते हुए उसे उसकी छवि के अनुरूप बनाती है। फिर यीशु को ऊपर उठाने का प्रयास करें। मन की नजर परमेश्वर के मेमने पर केंद्रित हो जो जगत का पाप उठा ले जाता है, यूहन्ना 1:29। और जब आप कार्य में लगे हों तो याद रखें कि वह जो पापी को उसके भटके हुए मार्ग से फेर लाता है, प्राण को मृत्यु से बचाता है और बहुत से पापों को छिपाता है। हम पढ़ते हैं इसे याकूब 5:20 में, परंतु यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा, कहता है मत्ती 6:15। क्षमा ना करने की भावना को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। जो दूसरों के प्रति निर्दयी है वह दिखाता है कि वह स्वयं परमेश्वर की क्षमा करने वाली कृपा का भागी नहीं है। परमेश्वर की क्षमा में गलती करने वाले का हृदय अनंत प्रेम के महान हृदय के करीब आ जाता है। ईश्वरीय करुणा की लहर पापी की आत्मा में और उससे दूसरों की आत्माओं में प्रवाहित होती है। मसीह ने अपने अनमोल जीवन में जो कोमलता और दया प्रकट की है वह उन लोगों में देखी जाएगी जो उसके अनुग्रह के भागीदार बनते हैं। लेकिन यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं है तो वह उसका नहीं है, कहता है रोमियो 8:9। वह परमेश्वर से अलग हो गया है। केवल उसे अनंत काल तक अलग रहने के लिए उपयुक्त है। यह सच है कि उसे एक बार क्षमा मिल गई होगी, लेकिन उसकी निर्दयी आत्मा दिखाती है कि अब वह परमेश्वर के क्षमाशील प्रेम को अस्वीकार करता है। उसने खुद को परमेश्वर से अलग कर लिया है और वह उसी स्थिति में है जैसे उसे क्षमा किए जाने से पहले थी। उसने अपने पश्चाताप को अस्वीकार कर दिया है और उसके पाप उस पर हैं जैसे कि उसने पश्चाताप नहीं किया था। लेकिन दृष्टांत का सबसे बड़ा सबक परमेश्वर की करुणा और मनुष्य की कठोरता के बीच के अंतर में निहित है। इस तथ्य में कि परमेश्वर की क्षमा करने वाली दया ही हमारी अपनी दया का माप है। जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने साथी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी? हमें इसलिए माफ नहीं किया जाता क्योंकि हम माफ करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम माफ करते हैं। सभी माफी का आधार बिना किसी योग्यता के परमेश्वर के प्यार में पाया जाता है, लेकिन दूसरों के प्रति हमारे रवैये से हम दिखाते हैं कि हमने उस प्यार को अपना बनाया है या नहीं। इसलिए मसीह कहते हैं, जिस तरह से तुम न्याय करते हो उसी तरह से तुम्हारा भी न्याय किया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मत्ती 7:2। इसलिए प्यारों भाइयों और बहनों, आइए हम परमेश्वर के क्षमा को महसूस करें, और उस क्षमा का महसूस करते हुए हम दूसरों को भी दया दिखाएं, क्योंकि हम जैसे दूसरों पर दया दिखाते हैं या दिखाता है कि हम परमेश्वर का दया पाए हैं। इसलिए आइए हम यीशु मसीह का सलाह को माने और उसके राह में चले। परमेश्वर आपको आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान करुणामय परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तुझे इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हम पर बहुत दया किया है, प्रभु यीशु मसीह को भेजा हमारे पापों से हमें क्षमा करने के लिए, हमें बचाने के लिए। हम भी एक दूसरे पर दया करें और क्षमाशील बने। पिता परमेश्वर हमें दयावंत बना और हमें तेरे प्रेम में जीने के लिए मदद कर। हम तेरे रास्ता में चले और दूसरों को भी तेरे प्रेम और तेरे रास्ता दिखाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण करिए, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं, hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान,
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।